ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से संसद में इस सप्ताह हुई कार्रवाई की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का ये चौथा सप्ताह था और पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार ये सत्र 2 अप्रैल यानी बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना था, लेकिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 16 अप्रैल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। इस सप्ताह सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को दोनों सदनों की बैठकें हुई। विधायी कामकाज के लिहाज से यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहा और संसद ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक और जन विश्वास संशोधन विधेयक चर्चा के बाद मंजूरी दी। सोमवार को लोकसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा हुई, जिसका वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक के माध्यम से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी में 12 संशोधन प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से भारतीय बैंकिंग प्रणाली की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक बैंक के एनपीए की कुल वसूली में दिवाला संहिता का 54% से अधिक का योगदान रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि आईबीसी की व्यवस्था के कारण अब दिवाला से जुड़े मामलों के निस्तारण में कंपनियां पहले से बहुत बेहतर काम कर रही हैं। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से इस विधेयक को मंजूरी दी। लोकसभा में सोमवार को ही नियम 193 के तहत वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास पर चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में नक्सलवाद का मूल कारण विकास की कमी, गरीबी और अन्याय नहीं बल्कि विचारधारा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर का निर्माण और कई बड़े काम हुए तथा अब भारत नक्सल मुक्त इसी सरकार के शासनकाल में बनने जा रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि अन्याय होने पर हथियार उठा लेना लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और ऐसी गतिविधि कभी स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र के लोग सरकार की सुविधाओं से छूट गए थे क्योंकि वहां लाल आतंक की परछाई थी। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि 70 साल में आदिवासी विकास से उपेक्षित रह गए तो दोषी कौन है। चर्चा की शुरुआत करते हुए शिवसेना के श्रीकांत शिंदे ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उसने अपनी मजबूरियों के चलते देश को रेड कॉरिडोर दिया, लेकिन मोदी सरकार ने ग्रोथ कॉरिडोर दिया है। रेड कॉरिडोर देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को कहा जाता है। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ने देश से वामपंथी उग्रवाद खत्म करने के लिए निर्धारित समय सीमा को जुमला करार दिया और दावा किया कि भाजपा सरकार नक्सलवाद खत्म नहीं कर रही बल्कि खनन गतिविधियों के लिए अपने लोगों को ग्रीन कॉरिडोर दे रही है। भाजपा के संबित पात्रा ने कहा कि यह ऑपरेशन ग्रीन हंट की नाकामी थी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 76 जवान अप्रैल 2010 में एक ही दिन में छत्तीसगढ़ में शहीद हो गए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अरुण भारती ने कहा कि बिहार में एक समय 23 जिले वामपंथी उग्रवाद की जकड़ में थे, लेकिन आज लगभग पूरा बिहार नक्सल मुक्त होने के कगार पर है। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस के ज्योत्सना महंत, भाजपा के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और राष्ट्रीय जनता दल के अभय कुमार सिन्हा ने भी चर्चा में भाग लिया। उधर राज्यसभा में सोमवार को शून्यकाल शुरू होते ही बीजू जनता दल नेता सस्मित पात्रा ने लोकसभा सांसद और भाजपा नेता निशिकांत दुबे द्वारा ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे ने पटनायक के खिलाफ अपमानजनक, गलत और मनगढ़ंत बयान दिए हैं जो पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। बीजू जनता दल के सदस्यों ने इसके बाद सदन से बहिर्गमन कर दिया। इसके बाद सदन में शून्यकाल शुरू हुआ। भाजपा के लक्ष्मण ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि धर्म के आधार पर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लक्ष्मण के बयान के दौरान ही विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई। उनके वक्तव्य को लेकर सदन में हंगामा होने लगा। इसके बाद लगभग पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व और विपक्षी गठबंधन इंडिया की ना तो बहस में रुचि है और ना ही उनके मन में लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान का सम्मान है। इसके बाद अन्य सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत आसन की अनुमति से अपने मुद्दे उठाए। सदन में भोजनावकाश के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक पर चर्चा हुई। चर्चा में हिस्सा ले रहे कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का सुझाव दिया। विधेयक पर चर्चा शुरू करते हुए तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमुद्दीन हक ने कहा कि ये विधेयक केवल सामान्य प्रशासन से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये संविधान के प्रावधानों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि ये विधेयक उच्च न्यायालय के एक निर्णय का उल्लंघन करता है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने इन सुरक्षाकर्मियों को ना तो शहीद का दर्जा दिया, बल्कि ना ही उन्हें समय पर पदोन्नति दी गई। बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान ने सरकार से पूछा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले इन जवानों के बारे में अदालत द्वारा आदेश पारित करने के बावजूद ये विधेयक क्यों नहीं लाया गया। राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव ने कहा कि आईपीएस अधिकारी जहां 15 साल में 4 से 5 पदोन्नति पाते हैं, वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारी एक भी पदोन्नति नहीं पाते, जो अन्याय है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि विधेयक सिर्फ उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटने और उसे निरस्त करने के लिए लाया गया है। चर्चा में विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। बुधवार को लोकसभा ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी। भारतीय जनता पार्टी, तेदेपा और कांग्रेस ने विधेयक का समर्थन किया, लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने विधेयक के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया। वाईएसआर पार्टी के नेता मिथुन रेड्डी का कहना था कि उनकी पार्टी विधेयक के वर्तमान स्वरूप को प्रदेश के हित के खिलाफ मानती है। कांग्रेस ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा भी पूरा किया जाना चाहिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश विधानसभा के 28 मार्च 2026 के संकल्प को प्रभावी बनाने और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती के संबंध में वैधानिक स्पष्टता लाने के उद्देश्य से वर्ष 2014 के अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने चर्चा में भाग लेते हुए सरकार से आग्रह किया कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तेदेपा सांसद और केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी ने विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि अब अमरावती प्रदेश की स्थायी राजधानी बन जाएगी। उन्होंने कहा कि अमरावती को राजधानी बनाने के लिए 29,000 किसानों ने हजारों एकड़ जमीन दी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सीएम रमेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश के लोग डबल इंजन की सरकार पर विश्वास करते हैं। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा ने उसी दिन जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 पारित किया, जिसमें छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और जुर्माने और दंड को अपराध के अनुरूप संशोधित करने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक इसमें 23 मंत्रालयों द्वारा शासित 79 केंद्रीय कानूनों में यानी कुल 784 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिनमें छोटी मोटी गलती पर पहले केवल चेतावनी दी जाएगी, दूसरी बार दंड लगेगा और बाद में दंड बढ़ सकता है या अदालती कार्रवाई शुरू हो सकती है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इससे पहले विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सदस्य सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि ये विधेयक जन विश्वास नहीं लाता, बल्कि विश्वास को तोड़ता है। भाजपा के तेजस्वी सूर्या ने कहा कि ये विधेयक आजाद भारत में अनेक मामूली गलतियों वाले प्रावधानों को अपराध मुक्त करने की सबसे बड़ी कवायद है। इस विधेयक का अध्ययन करने वाली प्रवर समिति के अध्यक्ष रहे सूर्या ने कहा कि भले ही आज कांग्रेस इस विधेयक का विरोध कर रही है, लेकिन प्रवर समिति में हर सिफारिश सर्वसम्मति से पारित की गई। समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक ने इस प्रस्तावित कानून को अपराध मुक्ति के नाम पर कानून को कमजोर करने वाला बताया। कांग्रेस सांसद प्रशांत पडोले ने विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने की मांग की। उधर राज्यसभा ने बुधवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों की सेवा शर्तों और पदोन्नति से जुड़े विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया तथा सरकार की ओर से भरोसा दिलाया कि ये कानून बनने के बाद इन बलों का बेहतर प्रबंधन होगा और कार्यकुशलता बढ़ेगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये विधेयक इसलिए लाया गया है ताकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के काडर का बेहतर प्रबंधन कर इसकी कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सके। मंत्री के जवाब के बाद उच्च सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया। इससे पहले कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का परिचालन कुशलतापूर्वक करने के लिए इस विधेयक में प्रावधान किए गए हैं। विधेयक पर चर्चा के दौरान कई विपक्षी सदस्यों ने आईपीएस की तुलना में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों को देर से पदोन्नति मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों से इस तरह के बलों के अधिकारियों की पदोन्नति में ठहराव आएगा और उनके अवसर कम होंगे। चर्चा में विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने भाग लिया। मंत्री के जवाब के बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसे उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ लाया गया है। उन्होंने इसे प्रवर समिति को भेजने का सुझाव दिया। इसके बाद कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन से बाहर चले गए। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि विपक्ष को चर्चा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वे मंत्री के जवाब के बाद सदन से बहिर्गमन कर गए हैं। उच्च सदन ने उसी दिन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा के बाद पारित किया। सदन में चर्चा के लिए यह विधेयक कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पेश किया और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी के कारण देश की बैंकिंग प्रणाली में काफी सुधार हुआ है तथा वाणिज्यिक बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए की वसूली में भी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि विधेयक के माध्यम से आईबीसी में 12 संशोधन प्रस्तावित हैं। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से इस विधेयक को मंजूरी दी। इससे पहले चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक को आर्थिक असमानता लाने वाला बताते हुए कहा कि सरकार को और कड़ा तथा मजबूत कानून लाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि विधेयक से सुधारों को और गति मिलेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बृहस्पतिवार को लोकसभा ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पारित किया। सदन ने विधेयक पर चर्चा के पश्चात ध्वनिमत से इस विधेयक को स्वीकृति दी। राज्यसभा इसे एक पहले ही पारित कर चुकी है। लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि ये विधेयक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के प्रशासनिक ढांचे में आवश्यक स्पष्टता और सुव्यवस्था प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विभिन्न पदोन्नति समितियों के माध्यम से समय समय पर पदोन्नति सुनिश्चित की जाती है। गृह राज्य मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। उधर राज्यसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा और गृह मंत्री नित्यानंद रॉय के जवाब के बाद ध्वनिमत से पारित किया। लोकसभा ने इसे एक दिन पहले ही पारित किया था। इसी के साथ ही अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने संबंधी विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक के कानून बनने के बाद अमरावती को 2 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की राजधानी माना जाएगा। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के साथ संसद में किए गए वादों को पूरा किया जाना चाहिए। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।